फिर इसी तरह से कुरान में इन्होंने दलील दी है कि ये बात कि मर्दों को कहकर औरतों को मुखातिब किया जाता है, इसकी दलील क्या है? वला याब शुहदाउ इज़ा मादू, ये इस मौजू से मुतल्लिक नहीं है, कोई और रेफरेंस है कि जब गवाहों को बुलाया जाए तो वो इनकार ना करें। इसी तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कोई कह सकता है आप में से कोई कि ये तो मर्दों को कहा जा रहा है, जमा नहीं है? तो देखिए कुरान में रोज़ों के बारे में एक ही आयत है जिसमें कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालों तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए। तो यहाँ क्या है? तुम पर अलैकुम, तो हम औरतें तो रोज़े ना रखें, बात समझ रहे हैं? अलैकुम का अगर तर्जमा करें ना तुम सब मर्दों पे, तो फिर हम औरतें तो रोज़े ही ना रखें, हालांकि हम सब रखते हैं। तो कुरान में अमूमी अंदाज़ क्या होता है कि मर्दों के जमा के सीगे में औरतों को भी शामिल किया जाता है। तो ख़ुलासा क्या निकला कि अल्लाह ताला ने इस काम को हमारे ऊपर फ़र्ज़ किया है और इसको हमने करना है इंशाल्लाह। ये जनरल बात थी, मैं इसको थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में समअप करना चाहूँगी कि अगर हम लोगों को बुराइयाँ करते देखें और ना रोकें तो इसका नुकसान क्या होगा? पहली बात है, शुरू में हमें बुरा लगेगा, बाद में बुरा लगना छूटेगा। दूसरी बात है, कल हम उनके अंदर शामिल हो जाएंगे। अल्लाह के नबी की बहुत ही बड़ी खूबसूरत रिवायात है इस पे कि पहली बुराई जो बनी इसराइल के उलमा में आई थी वो क्या थी? गौर से सुनिएगा और तकाबुल कीजिएगा आज के हालात से, कि जब कोई किसी को बुरा काम करता देखता तो रोकता, वहाँ के उलमा या दीनदार या जो भी साहिबे फरासत लोग थे वो उनको रोकते, लेकिन वो लोग उनके रोकने से नहीं रुकते। तो अगले दिन ये उन्हीं के हम प्याला और हम निवाला हो जाते, यानी वही काम करने लग जाते। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आज के दौर में लोग कहते हैं, आज के दौर में कहाँ होता है, पहले दिन मना करेंगे, फिर अब मजबूरी है ना, अब अपने रिश्तेदार हैं उनको नाराज़ तो नहीं कर सकते। मिसाल देती हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती ऐसी मिसालें देने में। आप कोई काम पसंद नहीं करते, खुशी के मौके पे, शादी ब्याह के मौके पे कोई भी करता है, और वो करने वाला भी हमारा बहुत करीबी रिश्तेदार है। इस्लाम क्या कहता है? फल युगैर हो भी यदि, हाथ से रोको भाई, ये नहीं होगा। आप कहते हैं ये तो नहीं कर सकते, तो फिर ज़ुबान से कहो कि इसको उठा लो, और ये भी नहीं कर सकते तो फभी कल भी। हम क्या करते हैं? वहाँ बैठ के सारा कुछ देख रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, फिर कहते हैं ज़रा खुशी नहीं, बड़े दुखी थे, ये है वो है। ये ईमान ना होने की अलामत है। याद रखिए, मेरे आपके ईमान का एसिड, एसिड टेस्ट ना साइंस की ज़ुबान में कहते हैं कि एसिड डाल के टेस्ट करना सबसे कड़वा टेस्ट है, कि हम अपने प्यारों में कोई गलत काम होता देखें और हम उसको ना रोकें, या रोकें वो ना रुके तो हम उठ जाएं। ये इस टेस्ट में तो बड़े बड़े, अल्लाह रहम करे कि नाम वाले भी फेल हो जाएंगे, दाढ़ियों वाले भी फेल हो जाएंगे, निकाबों वाले भी फेल हो जाते हैं। इस पर्चे में सिर्फ अल्लाह के वली और अल्लाह के नबी और वो बंदा जिसको सिर्फ अल्लाह से डर लगता है वो पास होगा। मुझे क्या, सब छोड़ दो मुझे, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे मामू, मेरी खाला, यही खून है ना हमारा, सब मुझे छोड़ दो, मैं नहीं मानूंगी आपकी बात, करो जो करना है। और यकीन करें, इतनी जुरत दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लोग पहले ही आपसे माफ़ी, वो बताते ही नहीं आपको कि आप आएँ, उनको बताया आपने आना ही नहीं, आपकी जान छुटती है। ये हम अपना कमज़ोर ईमान बार बार ज़ख्मी करते हैं ऐसी जगहों पे बैठ के, फिर बाद में कुड़ते हैं, गीबतें करते हैं, बुरा के उनको नहीं कहना, दूसरों को कहेंगे ये था वो था। तो ये बहुत बड़ा टेस्ट है, और ये मेरे और आपके ईमान का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। हम अपना ईमान अभी देख सकते हैं कि है कितना। बंदे में ईमान है, वो तो कहते हैं ऐसा मौका है तो मैं छोड़ूं किसी को। आपने सुना होगा वाकया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की राय क्या थी ग़ज़वे बदर के कैदियों की सूरत में, कि अल्लाह के नबी ना सिर्फ ये कि इनको कत्ल किया जाए, बल्कि हम में से हर एक को उसका रिश्तेदार दिया जाए, अपने हाथ से अपने रिश्तेदार को मारे, ताकि अल्लाह को दिखा सके कि अल्लाह आपका दीन मुझे अपने इस रिश्ते से ज़्यादा प्यारा है, कि ये कुफर और शिर्क पे आ गया इस्लाम को मिटाने के लिए। बात समझ गए? ये ईमान बोलता है। हज़रत उमर ने अपने सगे मामू को ग़ज़वे बदर में क्यों कत्ल किया? कोई लड़ाई थी, कोई जायदाद का मसला था, कोई कारोबार की साँझ गाती? नहीं, वो अल्लाह देख ले कि मुझे अल्लाह का दीन सबसे प्यारा है, हम इसमें फेल हैं, पक्के फेल हैं। शादियों में हम मजबूर, मंगनियों में हम मजबूर, हम हर उस मामले में मजबूर होते हैं जिसमें हमारे लोगों के माथे पे सिर्फ इतनी सी शिकने ही आ जाए, और शिकने भी नहीं आती, वल्लाह ही लोग आपकी इज्जत करते हैं। वो आपसे अकेले में माफ़ियाँ मांग लेंगे, रो लेंगे, हमारी मजबूरी, आपसे नाराज़ कभी नहीं वो होंगे। एक सिस्टर से बात हो रही थी तो कहने लगी कि सारी ज़िंदगी लोगों से डरी, अब जब डरना छोड़ा, बड़ी मज़े की बात कहने लगी हूँ, सारी जिंदगी लोगों से डर के गुजारी, तो जब डरना छोड़ा तो पता ये चला कि वो तो असल में मुझसे डरते थे। बात समझ गए? जिन्नों की बात है कुरान में सूरह जिन में, कि जिन ये सोचते हैं कि इंसान हमसे डरते हैं, और जब इंसान जिन्नों से डरने लगता है तो जिन उसको डराने लगते हैं। तो बात का खुलासा यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा रब बड़ा, जाओ सब छोड़ दो, मैं नहीं मानूंगी, मुझे आप प्यारे बहुत हैं, लेकिन मैं आपकी इस बात पे आई कैंट, क्योंकि मुझे अपना रब प्यारा है। तो ये दर्द पैदा करें, देखिए सीधे होते हैं हमारे खानदान के, नहीं ये हमने उनको ढीला किया हुआ है। वल्लाही मैं सच कहूंगी कि कई जगह तो हम जिम्मेदार बनते हैं अपने रिश्तेदारों की गलत काम के, तारीफें करके ना बोल के चुप रहे। गूंगा शैतान कहते हैं ऐसे शख्स को कि जो किसी जगह बुराई देखे, उसको समझे, फिर उसको ना रोके। आपने एक ताल्लुक तो बचा लिया ना, इंसानी ताल्लुक, आपने रब का ताल्लुक कमजोर कर दिया। इसका तरीका इख्तियार करके अच्छे तरीके से, और सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आपकी अपनी बारात, और झूठ ना बोलें बीमार हूँ, काम बड़े हैं, मसरूफ हूँ, कहीं और भी जाना है, नहीं कुछ भी नहीं, सिर्फ इस वजह से नहीं शामिल होंगी कि वहाँ मेरे रब की नाफरमानी का वक्त है। और बंदा तड़पता है कि अल्लाह करे ये बात कहने वाला मेरा सगा बच्चा क्यों ना हो, मैं नहीं जाके अल्लाह को दिखाऊंगी कि मेरा या का ना बुद्धू या का नस्तीन का दावा झूठा नहीं था। सारी दुनिया क्या खिलाएगा कोई और क्या पिलाएगा कोई। लोग कहते नहीं शोहर नाराज़ हो जाते हैं, शोहर की क्या जरूरत है? जो अल्लाह को शोहर नाराज़ करता है, वो शोहर आपसे खुश भी हो गया तो आपको जन्नत कोई नहीं मिलनी। कितनी लड़कियां हैं हमारी सोसाइटी की, जिनको आप भी जानते होंगे, अच्छी खासी शरीफ, माँ बाप ने बड़ी इज्जत असमत में पाली होती हैं, इधर शादी की, वो शादी ऐसी जगह हो गई जिस लड़के में शऊर नहीं, अब मियाँ के नाम पे पीछे होती है। कल वक्त किसी से कोई बात हो रही थी तो जिक्र हुआ, कहने की शरई पर्दा करती बच्ची गई थी, शादी के वक्त पे वो दुल्हन बनी हुई शरई पर्दे में थी, और अब ऐसा ऐसा शादी के बाद पर्दा छोड़ दिया, तो क्या वो मियाँ उसको खिलाएगा? वो खुश होगा? वल्लाह ही वो भी नहीं खुश होगा। अल्लाह उसके दिल में उस बीवी का प्यार कोई नहीं डालेगा, वो उसे और गलत बातें मनवाएगा। तो ला तअली मखलूकिन फ़ी मासीयतिल खालिक, जहाँ खालिक की नाफरमानी हो। मैंने किसी की नहीं मानी, चाहे मेरी सगी माँ हो, चाहे मेरा सगा बाप हो, मेरा शौहर और बच्चे हो, जो मर्जी हो, मैंने नहीं मानी, मैंने अपने मालिक की मानी है। ये जुरत पैदा करने के लिए बस इंसान को थोड़ा सा ईमान चाहिए, और वल्लाही आज हमें अपने लोगों में इसकी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। मैं अपने दिल के साथ आपको बताऊंगी कि बाहर के मुल्कों में दीन के काम की अहमियत है, बट जब हम अपने लोगों में, और अपने लोगों से ना बाहर रहते हुए भी अपनों में, वहाँ भी लोग गलत काम सारे ही करते हैं, आज मुसलमानों को तबलीग करने की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है नॉन मुस्लिम की निस्बत। उसको तो एक बात कहेंगे ना कि मुसलमान हो जाओ, यस या नो, मुसलमान को तो दसियों बातों पर टोकना पड़ता है। नमाज़ें पढ़ो, झूठ ना बोलो, नाफरमानी ना करो, अपनी इज्जत इस्मत की हिफाजत करो। हमारा तो एक लंबा खाता खुल जाता है अपने मुसलमानों में, हालांकि अल्लाह के नबी के दौर में ऐसा नहीं था। मुझे नहीं याद किसी हदीस को पढ़ते पढ़ाते या सीरत को पढ़ते हुए मैंने कभी ये पढ़ा पढ़ाया हो कि अल्लाह के नबी ने सारे लोगों को जमा किया, सहाबा को, और कहा अल्लाह के बंदो नमाज़ें पढ़ा करो, ये फजर पे क्यों सोए रहते हो, और अल्लाह के बंदो झूठ ना बोला करो, अल्लाह के बंदो सूद ना खाओ। कोई एक हदीस नहीं, एक दफ़ा हुक्म जिस दिन आता था ना, शराब हराम हो गई, बस उसके बाद सबको कह दिया जाओ जी ख़त्म, मटके फूटे, शराब बह गई, दैट्स इट, दैट इज़ एंड। अबू जहल कहा करता था कि मुझे मोहम्मद तेरा दीन बुरा नहीं है, मुझे पता है ये सच्चा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पर मैं इसलिए नहीं मुसलमान होता कि इसके बाद मुझे अपने ऊपर पाबंदियाँ लगानी पड़ेंगी। कहेंगे मैं ये पाबंदियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो याद रखिएगा ये बहुत अहम है, हम खामोश मददगार बन जाते हैं अपनी सोसाइटी के गलत कामों को मान के। तरीका हो, हिकमत हो, जुबान नरम हो, और दिल में दर्द हो, आप जिस जगह जाइए उनको बड़े प्यार से बता सकते हैं कि ये बात जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये कल आपके सामने बीमारी की सूरत में आएगी, ये आपके सामने किसी हादसे की सूरत में आएगी, ये आपके सामने तलाक की सूरत में आएगी, क्योंकि आप अल्लाह को नाराज़ कर रहे हैं। अभी मुझे 2 माह हो गए होंगे, अब तो शायद बुक पढ़ाई है अल्हम्दुलिल्लाह फ्रांस में, पेरिस में। बुक का नाम क्या था? मुसीबतों से कैसे निमटे। आपको वेबसाइट पे कहीं भी उसकी रिकॉर्डिंग्स मिले हैं, या बुक हमने माशाल्लाह उसको एक पूरे वीक में पढ़ा, पढ़ने के काबिल बुक है। उसके अंदर ये जुमले मैंने बोले हैं जो मेरी ज़ुबान पे आ गए, कि ये जो हम खुशियों के नाम पे या नाफरमानियाँ करते हैं ना, असल में अपनी मुसीबत बुलाते हैं, जो फिर सर का दर्द बनेंगी या कमर का दर्द बनेंगी, और ये हमारे क्या क्या मिसहैप होंगे हमारे साथ, क्योंकि अल्लाह कहते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबत इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम। तो अपनों के साथ ये हमदर्दी है, लिखे ये बात, अपनों के साथ ये हमदर्दी है कि उनको भी रोकें कि आप इस गंदगी में ना पड़े, आपका नुकसान होगा। आज आप देखिए कितने घर टूटते हैं, कभी आपने सोचा? कभी इतनी तलाकें सुनी थी? कभी इतनी नाचाकियां सुनी थी? और जितने लाड अब देखे जाते हैं और जितनी तैयारियां अब शादियों की जाती हैं, आज से 20 साल पहले कोई करता था इतनी? तो फिर इतने लाड और चाओ और प्यारों से जब वो शादियां हों, तो फिर तो वो दो क्या कहते हैं दूल्हा दुल्हन, वो तो पाँव धो धो के पिए ना, घर वालों की शुक्र गुजार हों कि आपने तो मेरे लाड इतने देखे। कहानी उधर भी ऑपोजिट है, ये सजाएं मिलती हैं। आप थोड़ी देर बैठ जाएं और उसके बाद देखें क्या होगा। हज़रत आयशा थी या हज़रत असमा उनकी बहन थी, सर में दर्द था उनके, तो किसी ने पूछा कि वजह क्या है? अच्छा हम भी होते हैं ना तो कहते हैं वो मौसम बदल रहा है, यानी हम हर बीमारी के पीछे भी कुछ ज़ाहरी सबब ढूंढते हैं ना। उन्होंने एक लफ्ज़ बोला
हमारे
था,
भी
बीज़म्बी, एक लफ्ज़ बीज़म्बी, मेरे गुनाह की वजह से बीज़म्बी, मुझे अपने गुनाह की वजह से सर में दर्द है। ये सारी बातें उसी बुक की सुना रही हूँ, शायद आपका दिल चाहे तो आप उस बुक से फ़ायदा उठा सके। ये आपके मेरे ऊपर जो तकलीफ़ आती है ये हमारे गुनाहों से आती है, तो लिहाजा दूसरों को बुराई से रोकना है इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ तक जो बात की है ये जनरल दावा की थी, अब थोड़ा सा आगे टॉपिक है सेम है लेकिन इसमें दलाइल पढ़ लेते हैं। दूसरा टॉपिक देखिएगा ख्वातीन पर फर्जियत एहतसाब के मुतालिक दलाइल, यानी अब अगली हिस्से में हम चंद रेफरेंसेस वो नोट करेंगे कि औरतों को कहाँ ये कहा गया। जैसे लोग कहते हैं ना कहाँ लिखा है, तो आप पूछ सकते हैं कि आपने पढ़ा क्या कुछ है। तो क्या क्या पढ़ा है आइए देखिए। पहली दलील हमारे सामने जो है ये सूरत अल अहज़ाब की आयत नंबर 32:32 है। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, या निसा नबी लस्तुन्न काहदिम मिनन निसाई इनित्तकैतुन्न फला तहदान बिलकौली फयत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वकुलन कौलम मारूफा। ए नबी की बीवियों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, अगर तुम अल्लाह ताला से डरने वाली हो बस तुम गैर मर्दों से दबी जुबान से बात ना करो, कि जिसके दिल में गुनाह की बीमारी है वो लालच करने लगे, और खरी खरी साफ बात करो। अल्लाह ताला की इरशादे गरामी वकुलन कौलम मारूफा की तफसीर में तर्जमानुल कुरान में अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अमरहुन्न बिलअम्री बिलमारूफ़ी व नहयी अनिल मुनकर। अल्लाह ताला ने इन्हें नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने का हुक्म दिया। आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं ज़हनी तौर पे? यानी इस आयत में जो औरतों को ये कहा गया कि मारूफ बात करो, तो मुफस्सिर कहते हैं मारूफ बात से मुराद इधर तबलीग है, अच्छी बात नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना है। अच्छा बाज़ लोग फिर इस पर कहते हैं देखे या निशान नबी का लफ्ज़ लिखा है, तो ये तो बात सिर्फ नबी की बीवियों के लिए, अजवाज मुतहरात के लिए है। हालांकि इसके बारे में इमाम अबू बकर जस्सास है वो कहते हैं, पढ़िएगा, कि अल्लाह ताला ने इन बातों का अदब तो नबी की बीवियों की हिफाजत की गरज से सिखाया है, लेकिन अहले ईमान की औरतें भी इसी की पाबंद हैं। क्या पता चला? आयत में बज़ाहर नबी की बीवियों को पुकारा गया है, लेकिन हर मुसलमान औरत को ये कहा गया कि तुम दूसरों को नेकी का हुक्म दोगी और बुराई से रुकोगी। दूसरी दलील और भी क्लियर है, अगर आप आयत देखें आपके सामने लिखी हुई है, इसका रेफरेंस सबसे नीचे लिखा होता है, अगर आप ख़ुद भी पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, सूरह तौबा आयत नंबर 71 और 72 में तो बहुत खुल के बात हो गई। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, वल मोमिनून वल मोमिनातु बादुहुम औलियाउ बादिन यामुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ। और ईमान वाले मर्द और औरतें एक दूसरे के मददगार होते हैं। देखिए पहला काम क्या आ रहा है, किस बात पे मददगार है? भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, पहली बात। अगला तर्जमा खुद पढ़ लीजिएगा तो क्या पता चला कि यहाँ औरतों का अलग से जिक्र है, मोमिनात और मोमिनीन को अलग कर दिया गया। तो क्या पता चला इस बात से कि औरतों का भी इस काम को करना उसी तरह अहम है और लाजिम है जैसे कि मर्दों का है। और आपने अगर पढ़ा होगा तो पूरी आयत में पांच सिफात है, जिसमें से दूसरी सिफत अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर है। और इसका बदला क्या मिल रहा है? दुनिया और आखिरत में बेहतरीन जजा है। अल्लाह ताला हमें इस काम के करने की तौफीक अता फरमाए। एक मुफस्सिर हैं अलामा इब्ने नहास दमिश्की, वो इसके बारे में लिखते हैं वल मोमिनात में, कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि अल्लाह का वल मोमिनात यानी ईमान वाली औरतें फरमाना इस बात की दलील है कि बहालत इस्तताअत यानी जिस हद तक कर सकें औरतों पर मर्दों की तरह अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर वाजिब है। ठीक है, दो बातें होगी। पहली कौन सी थी? सूरत अल अहज़ाब नबी सल्लम की अजवाज के नाते से, और दूसरी सूरत तौबा 71-72। अब तीसरी दलील देखिएगा, नबी सल्लम की हदीस है, आप मेरे साथ दोहराएंगे। हदीस के लफ्ज़ मैं आपसे क्यों दोहरवा रही हूँ भला, आपको पता? ताकि आप खूबसूरत हो जाएं। ये क्या बात हुई? हदीस पढ़ने वाले को नबी सल्लम की दुआ मिली हुई है कि अल्लाह उसके चेहरे को हरा भरा रखे जिसने मेरे लफ्ज़ों को, मेरी हदीस को वैसे ही कहा, सुना, पढ़ा जैसे बयान किया, और फिर उसको बाद में आगे बयान किया। तो ये आपका ब्यूटी कोर्स है, पढ़ना है। अब देखिएगा आवाज़ कितनी ऊंची होगी। है, चलिए पढ़ते हैं। वल मरअतु राइयतुन अला अहली बैती ज़ौजिहा। इमाम बुखारी और मुस्लिम हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से नकल करते हैं, नबी सल्लम ने फरमाया, बड़ी खूबसूरत हदीस है, तवील हदीस है, खबरदार तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी राया के मुतल्लिक सवाल किया जाएगा, पस इमाम जो के लोगों पर निगहबान है इससे इसकी राया के बारे में पूछा जाएगा, मर्द अपने घर वालों का निगहबान है और उससे उसकी राया के मुतल्लिक सवाल होगा, और औरत अपने शौहर के घर वालों और उसके बच्चों की निगहबान है और इससे इनके बारे में सवाल होगा, किसी शख्स का गुलाम अपने आका के माल का निगहबान है और इससे इसके मुतल्लिक पूछा जाएगा। अब इसमें बार बार लफ्ज़ राया आ रहा है, तो हम तो राया उसको कहते हैं ना जो बादशाह की होती थी, तो इमाम खत्ताबी कहते हैं कि राई से मुराद क्या है? जिन लोगों का वो सरपरस्त बनाए, गार्डियन है, टेक केयरर है, उनकी हिफाजत करे, इनके मामले में अमानतदार हो। इन्हें अपने सपुर्द औरत के राया निगेबान होने का तकाजा ये है कि जिनकी निगेदाश की जिम्मेदारी इसको सौंपी गई है वो इन्हें भलाई का काम छोड़ने पर इसके करने का हुक्म दे और बुराई का करने से रोके। सच बताएं, आज के शौहर नेकी के करने और बुराई के करने पे ही अपना किरदार अदा करते हैं। जो करते हैं वो बेचारे मौलवी कहलाते हैं, तबलीगी कहला लेंगे, मुल्ला कहलाएंगे। इस पूरी लंबी हदीस का खुलासा पता क्या है? शौहर का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बीवी को नेकी की बात पे प्रमोट करे और गुनाह से रोके, और जब शौहर है तो बीवी का तो ऑब्वियसली उसके साथ है। तो खैर ख्वाही और अखलास ये है, देखिए आप शौहर से ज़्यादा किसी की मुखलिस हो सकती हैं? आपका सारा स्टेटस ही उसके साथ चलता है। तो क्या हम अपने शौहरों को जहन्नुम में जाने वाले काम करते देखकर छोड़कर हम इसलिए बैठे रहें कि उनको अच्छा ना लगे और बुरा ना लगे? तो घरों में हर अच्छे तरीके से इंशाल्लाह देखेंगे, और जब आगे आप वाकयात पढ़ेंगी ना तो आपको शौहरों को तबलीग करना भी आ जाएगा और बच्चों को करना भी आएगा। असल वजह यह कि हमारा तरीक़ेकार ज़्यादा नहीं अच्छा होता, हम डायरेक्ट डंडा मारने वाला स्टाइल रखते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इन सारी बातों के दौरान हम तबलीग की हिकमतें भी पढ़ते रहेंगे। और मर्द बीवी से पूछेगा तो बीवी किससे पूछेगी? बच्चों से पूछेगी। ये कुल लुकुम रायन से मराजे, हर एक अपने अंडर वालों को, जो आपके जैसे सब कोऑर्डिनेट कह लीजिए या आपके जेरे दस्त हैं, उनसे पूछा जाएगा, तो औरत से भी पूछा जाएगा, क्योंकि हदीस के लफ्ज़ क्या हैं? वहिया मसूलतुन अन्हु, उससे भी उसके बारे में सवाल किया जाएगा। तो आपका मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपने घर में जो लोग हमारे अंडर होते हैं उनकी नमाज का, उनके दीन का, उनकी पागी पलीदी का ख्याल रखें। हज़रत अनस कहते हैं, हदीस है कि यकीनन अल्लाह ताला हर राई से पूछेगा कि इसने अपनी रईयत की हिफाजत की या इसको ज़ाया किया। अच्छा, राई कहते किसको हैं भला इंग्लिश में या उर्दू में? चरवाहा, शेफर्ड। क्या करता है शेफर्ड या चरवाहा? बकरियों के पीछे रहता है ना, तो माँ को भी अपने बच्चों के पीछे वही चरवाहे की तरह रहना है और बाकी जो जिसके अंडर है। इमाम अबू हुरैरा से एक रिवायत है, ये हदीस है, पढ़ ले आप मेरे साथ। मा मिन राइन इल्ला युसलु यौमल कियामती अकाम अम्र अल्लाही अम अदाअहु। हर एक राई से रोज़े क़यामत सवाल किया जाएगा कि इसने अल्लाह ताला के हुक्म को कायम किया या इसको ज़ाया कर दिया। तो ख़ुलासा क्या निकला कि हर खातून को चाहिए कि वह अपने घर वालों और अपने इर्द गिर्द वालों के बारे में केयरफुल रहे, वरना हसरत और नदामत के सिवा कुछ नहीं होगा। और आपको मुझे इस काम की कोशिश करनी है। मैं यहाँ एक छोटी सी बात ऐड करके आज के सेशन को क्लोज़ करूँगी, और वो क्या है कि घर की मासियाँ, काम करने वालियाँ, ड्राइवर, माली बाबे, जिस हद तक आप और मैं इन लोगों से फ़ायदा उठाते हैं, हमें इनके दीन का उतना ही ज़्यादा हरीस होना चाहिए। बाज़ लोग अपने काम के लालच में मासियों को नमाज ना पढ़ने देते हैं, और वो पढ़ें तो उनके सर पे सवार हो जाते हैं कि आप ये शायद काम से बचने के लिए बैठी है। देखिए, आपके पास अल्लाह ने एक बेजुबान बंदी भेज दी है, घर में वो रहती पढ़ती ना पढ़ती, आपके पास उसको 5 वक्त की नमाज का अदी होना चाहिए। अपने ड्राइवरों को वक्त दें कि वो बेचारे मस्जिद में जहाँ वक्त आ गया नमाज पढ़ें। माली बाबे तो जो भी बाहर होते हैं, लेकिन जो घर के अंदर ख़वातीनें आती हैं, आप इन्हें नमाज के वक्त में चले वज़ू करो, नमाज़ पढ़ो। मैं ऐसी सिस्टर को जानती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में पर आवर पे किया जाता है, एक एक घंटे के पे होते हैं। तो वो अपनी मासी को अगर 4 घंटे के लिए बुलाती थी काम करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप तुम्हें मैं 5 घंटे के लिए बुलाऊंगी। अब वो तो उसकी पेड हो गई ना, जो मर्ज़ी कराएं। 4 घंटे में उनसे काम करवाती और 5वें घंटे में उनको बिठा के तो दर्स सुनाती। बैठ के दर्स सुन रही है मासी जी आराम से बैठ के सोफे पे, और बाद में उसको पैसे मिलने। तो वो तो पैसों के लिए सुने, और आहिस्ता आहिस्ता जब शौक़ पैदा होता है तो फिर खुद ब खुद काम आ जाता है ना। असल बात यह है कि हमारे दिल में इस चीज़ की हिरस होनी चाहिए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा टारगेट इतना ही था, अल्लाह ने पूरा कराया। खुलासा क्या निकला, हमने इंट्रोस किए और बुक के हिसाब से हमने नेकी के काम की अहमियत आम तौर पे, इसकी फर्जियत, और दूसरा हमने औरतों के नाते से पढ़ी। इंशाल्लाह अगली नशिस्त जो होगी वो अब इस काम की अहमियत और उसकी इम्पोर्टेंस पे होगी। चलिए, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।